16। उस दिन मैं रोती ही रही। पक्षी के बच्चों को घोंसले में पहुंचाने की हट करने वाली भावुक प्रीता ने अपने ही नन्हे शिशु को आज अपने हाथों से दूर धकेल दिया था। वह बालक कहाँ जाएगा, किसके हाथ पड़ेगा या बहता बहता सीधा सागर में जा मिलेगा। यदि यही हुआ तो अनेक शंकाओं से मेरा मन व्याकुल हो गया। सिर उठाने तक की इच्छा नहीं होती थी, किसी को मुख दिखाने का साहस नहीं होता था। रात में कोई महल में आकर समय चला गया। थोड़ी देर बाद फिर आया। उसने धीरे से मेरी पीठ पर हाथ फेरा। मैंने समझा कि वह धात्री सुले। मैंने उसको चिल्लाया, धात्री तू जा यहाँ से। मैं उसका स्पर्श तक नहीं चाहती थी। बेटी ऊपर देख, मैं चौंक पड़ी। वे पिताजी थे। समय के दुनिया प्रकाश में वह खड़े थे। मन में धात्री का पहरा न होने के कारण वे सीधे भीतर आ गए थे। मैंने आंखें पोछ कर उनकी ओर देखा। भय से मेरा मन सुन्न सा हो गया। क्या सब कुछ जान गए थे? धात्री एक दिन का भी धैर्य नहीं रख सकी थी क्या? अब न जाने क्या क्या सुनना पड़ेगा। इतना निर्मम कार्य करने पर भी क्या मेरा भविष्य अंधकार ही होगा? मेरा कंधा थपथपाते हुए शांतिपूर्वक बोले, कुंती मथुरा से तुम्हारे पिता का पात्र आज ही आया है। उन्होंने तुम्हारे स्वयंवर का आयोजन करने का विचार किया है। उनकी बड़ी उत्कट इच्छा मालूम पड़ती है। मैंने मुक्ति की सांस ली। कुछ बोलना चाहिए सोचकर मैंने कहा, जैसी उनकी इच्छा और आपकी आज्ञा। मैं जानता हूँ तुम्हें मथुरा की याद दुख देती होती। अब वह कुछ हल्का हो जाएगा। तुम जल्दी ही अपने माता पिता को देख सकोगी। आँख पोछो, दुखी मत हो। उनको कुछ भी पता नहीं था वे क्या कर रहे थे या मेरी भी समझ में नहीं आ रहा था। 17। स्वयंवर की तैयारियां प्रारंभ हो गई। पिताजी से मैंने यह कहा था, जैसी आपकी आज्ञा। इसे वे यही मानकर चले कि मेरी सहमति और वे आगे की सभी तैयारियां करने लगे। मेरा मन इधर उधर भटकने लगा। जैसे कोई शिकारी मृगी की पीछा करता हुआ वैसे अनेक विचार मेरे निरंतर पीछा करने लगे। जिस समय मैं स्वयंवर की माला हाथ में लेकर खड़ी होऊंगा संभवतः उसी समय कोई भुजंग ऊपर से के छिद्र में से उस पेटिका में घुसकर मेरे लाल के गले को कुंडली में कसकर बैठा रहे। जिस समय मैं विवाह की वेदी पर खड़ी होंगी ठीक उसी समय कहीं मैं पेट का नदी तल के कीचड़ में न फंस जाए। जिस समय वाद्यों के संगीत में मेरे सिर पर मंगल अक्षत पड़ रहे होंगे उसी समय किसी पत्थर से टकरा कर उस पेट का ढक्कन न खुल जाए। कहीं अब तक खुले दिखाई पड़ने वाले मेरे लाल के तेजस्वी सुनहरे दीप को बुझाने के लिए आकाश में फेरने वाले चील और गृद्धों ने झपट्टा मार मार कर उसके सिर को लहलुहान न कर दिया हो। मैं विवाह के मंगल सूचक वाद्य सुन रही होंगे। उधर मेरा लाल अट्ठहास करते हुए लहरों का कर्कश नृत्य गीत सुन रहा होगा। मेरा मन मछले के जाल में फंसी मछली की तरह छटपटाने लगा। मैं जितना अधिक विचार करती उतना ही अधिक पुलस्ता जाता। पलंग पर उपधान में मुंह छिपाकर मैं सिसकने लगी। उसका गोल मनोहर चेहरा, घुंघराले सुनहले बाल और कानों के सुकुमार कुंडल दिन भर लगातार मेरी आंखों के आगे नाचते रहते। प्राणों का हाहाकार सुनकर मैं अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती। 18। मेरे स्वयंवर का आमंत्रण आसपास के सभी मानव राजाओं को भेज दिया गया। समस्त नगर में यही चर्चा हो रही थी। मुझको अपने भाग्य पर तरस आ रहा था। प्रथा से मैं कुंती बन गई थी, कुंती से माता बनी और अब फिर कुमारी बनकर मैं स्वयंवर के लिए तत्पर होने वाली थी। संसार की किस स्त्री को विधाता ने मेरी तरह निर्दयतापूर्वक मन चाहा नाच दिखाया होगा। लेकिन मेरे शब्दों का प्रत्युत्तर देने वाला यहाँ कोई था क्या? यह स्वयंवर मुझको नहीं चाहिए। यदि मैं चीख कर तब से यह कह देती तो अनवरत प्रश्नों के मार से सबने मुझको अधमरा कर दिया होता। स्त्री मानव समाज के पशुशाला में सामाजिक रूढ़ियों की रस्सी से बंधी हुई कई गाय होती है। अनेक बातें उसकी इच्छा के विपरीत होती है लेकिन वह मुक्त मन से कभी उनका उल्लेख नहीं कर पाती। माने कोटि कोटि दुखों को आकाश की तरह शांत रहकर चुपचाप सहन करने के लिए ही उसका जन्म होता है। स्वयंवर का दिन निकट आने लगा। सभी नगरजनों का उत्साह समुद्र में जैसे जार आ गया। उनकी राजकुमारी का स्वयंवर था। विविध प्रकार के वैभव का प्रदर्शन उनको देखने को मिलने वाला था लेकिन मेरा अकेला मन देह के अंधेरे कक्ष में आंसू बहाता रहता। मैं अपने लाल को एक बार भी तो दूध नहीं पिला सकी थी। अब कुंती दो जीवन बिताने लगी, एक भीतर की कुंती और एक बाहर की कुंती, एक राजकुमारी का और एक भग्न हृदय माता का। इन दो कुंतियों के बीच मेरे दयनीय प्राणों की दुर्दशा होने लगी। राजस्त्रियों के दुख भी राजभवन की तरह विशाल होते हैं और उनके कुल और प्रतिष्ठा के प्राचीर दीवारें सदैव घेरे रहती हैं। 19। स्वप्न शायद स्मृति की संतान होती है। नित्य रात को मैं चित्र विचित्र स्वप्न देखती। कभी स्वप्न में चंडोल पक्षी का वह बच्चा अपनी चोंच फाड़कर दीन स्वर में चिल्लाता तो कभी कभी नदी किनारे दिखने में वत्सवत्सा गायरा बहाने लगती। उसका पुष्ट बछड़ा उसके पीछे झब्बेदार पूंछ उठाकर उछलता कूदता दिखाई देता। एक दिन उस स्वप्न में मैंने बड़ा भयानक दृश्य देखा। पानी में उछकोले खाते हुए वह पेट का नदी में एक पाषाण खंड में अटक गई थी। भीतर बालक भूख से चीख रहा था। आगे बढ़कर स्नेह से उसे कोई उठा नहीं रहा था। लहरों में जब वह पेटका हिलती तो बालक समझता है कोई उसको उठाने के लिए आ रहा। हाथ पर मारकर किसी को गोद में जाने के लिए वह उत्कंठित हो जाता लेकिन किसी ने भी उसको गोद में नहीं लिया। चिल्ला चिल्ला कर वह थक गया। अंत में भूख से व्याकुल होकर अपने नन्हे हाथ पर पटकते पटकते उसको भयानक हिचकी आई और वो सदा के लिए शांत हो गया। लेकिन वह शांत नहीं हुआ था। थोड़ी देर बाद उसका अमृत शरीर धीरे धीरे हिलने लगा विचित्र ढंग से। क्षण प्रति क्षण उसका सुनहला अंग और अधिक सुनहला होता हुआ फूलने लगा। पेटिका का ढक्कन खटाक से उसने पैरा से खोल दिया। बढ़ते बढ़ते वह उस आकाश पर जैसा विशाल हो गया। उसकी मुखमुद्रा क्रोध से तमतमा रही थी। कान के कुंडल संतप्त हो गए थे। उसकी नीली आंखें खुद से लाल हो गई थी। अश्वना नदी के जल पर अजस्र अपने पैर बढ़ाता हुआ वह धनाधन मेरी ओर दौड़ता आ रहा था। अपनी मुट्ठी बांधकर क्रोध से ओट चबाता हुआ कह रहा था, माता के पवित्र नाते को पैर तले रौदने वाली राक्षसी, प्रतिष्ठा के रेशमी आवरण में छिपकर बैठने वाली डाइन, ठहर। उसने अपनी शक्तिशाली मुट्ठी मेरे सिर पर मारने के लिए ऊपर उठाई। मैं चीख उठी, धात्री दौड़। धात्री शायद भवन के बाहर खड़ी थी। मेरी भयंकर चीख सुनकर वह दौड़ती हुई भीतर आई। मैं रूम का स्वेद पूछते हुए घबरा कर बोली, राजकुमारी कितनी डर गई हैं आप? कोई स्वप्न स्वप्न देख रहा था क्या? धात्री मेरा लाल, मैं कुछ भी नहीं कह सकी। ये दासी मेरी व्यथा कैसे जान पाएगी? राजकुमारी आपका लाल सुरक्षित है। मैं आपके जागने की प्रतीक्षा कर रही थी। मेरी पीठ पर हाथ फेरते हुए दबे हुए सर में बोली। मैं झटपट उठी और सिकंदर पकड़कर झकझोरते हुए आनंद से चिल्लाई, कहाँ है, किसको मिल गया है वो? उसने बाहर खड़े हुए कुछ को भीतर बुलाया। झुककर वह भवन में आया। मैंने उससे एकदम तीन चार प्रश्न किए, कहाँ गई है वो पेट का, किसको मिली, जिसको भी मिली उस शिशु को गोद में उठाया नहीं। राजकुमारी वह पेट का अश्व नदी से चरमणवती में गई है। चरमणवती नदी से कानकपुर के पास वह यमुना में गई। यमुना से प्रयाग के पास वह गंगा में गई। फिर प्रयाग से 50 वर्षन दूर काशीराज के पास वह अंग देश की चंपा नगरी के पास पहुंची। किसको मिली वह? दैवयोग बलवान था, एक सारथी ने उसे जल से बाहर निकाला। 300 योजनों की यात्रा करके पहुंची थी वह पीटिका। सारथी? जी हाँ राजकुमारी, उस सारथी की स्त्री ने उस बालक को गोद में ले लिया। उसको देखते ही उस स्त्री के आंचल से दूध आ गया। जब बालक सारथी के पर्णकुटी में सुरक्षित है। क्षमा करें राजकुमारी, लेकिन वह बालक किसका है? किस पाषाण हृदया ने माता ने उसको इस प्रकार मृत्यु के मुख में धकेल दिया था? वह बालक दुर्वासा ऋषि के महायज्ञ का है। उसकी ओर अपने गले का मोतियों का हार फेंकते हुए मैं बोली, किसी से कुछ भी मत कहना। गुरुदेव दुर्वासा? भयभीत होकर और स्पष्ट सावधगार निकालकर वह जल्दी जल्दी हार लेकर चला गया। मेरा मन शांत हो गया। प्रसन्न होकर मैंने धात्री को लिंगन में भर लिया। मेरी आंखों से बहने वाली अश्रुओं की धारा उसकी कंचुकी भिगोने लगी। उसमें एक राजकुमारी की व्यवस्था के दुख के आंसू थे, उसमें अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए छटपटाने वाली एक माता के आनंद के आंसू थे। कहीं भी हो वह सुरक्षित था। 20 स्वयंवर का दिन आया। नगर आमंत्रितों से भर गया। राजभवन के सामने खुले प्रांगण में विशाल मंडप सजाया गया। पिताजी छोटे बालक की तरह उत्साह से यह देखते हुए कि कहाँ किस वस्तु की आवश्यकता है पूरे मंडप में घूमने लगे। नगरजन अपने भवन को सजावट करने लगे। नवाड़े नगाड़े तंतु वीण तुरई आदि बजने लगी। मगध कोशल मद्र चेद विदेह काशी सभी देशों के राजेश्वर स्वयंवर के लिए आए। मथुरा से माताजी और पिताजी कन्यादान करने के लिए आए। भाई वसुदेव और श्रुतश्रवा नामक बहन आई। मेरे मथुरा छोड़ जाने के बाद वहाँ पिता पिता ने वसुदेव को पुत्र मान लिया था। श्रुतश्रवा को मैं पहली बार देख रही थी। राजभवन में बहुत हर्षोभा स्वयंवर का यह समारोह हो रहा था, इसलिए चारों उत्साह उत्साह छाया हुआ था। विवाह स्त्री की जीवन सरिता का एक सबल और पराक्रमी पुरुष के समुद्र से मिलती है। वह स्मरणीय मोड़ एक स्त्री के खिले हुए सुगंधित जीवन पुष्प का ससुराल के विविध व्यक्तियों की माला में मधुर कुंफन। स्त्री के जीवन का पहला ही मंगलमय संस्कार आर्य स्त्री का पुनर्जन्म। स्वयंवर का समय हो गया। मंडप नगरजन एवं आमंत्रितों से खचाखच भर गया। पिताजी ने उठकर सबको संबोधित कर कहा, आर्यावर्त के पराक्रम में राज राजेश्वरगण मथुरा के यादव रासूर सेन की औरस कन्या प्रथा मेरी लड़की कुंती अब मटक मंडप में वरमाला लेकर आएगी। आमंत्रित जनों में से अनुरूप वर के गले पे वह स्वेच्छा से वरमाला डालेगी। आप लोग इस स्वयंवर में आए हैं यह देखकर मेरा मन हर्ष से फूला नहीं समा रहा है। एक भोजवंशी राजा के रूप में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस स्वयंवर में कोई प्रण नहीं रखा गया है। मेरी कन्या की कुंती की स्वीकृति ही इस स्वयंवर का प्रण है। सबने खड़े होकर आदरपूर्वक पिताजी को अभिवादन किया। मंडप में चारों ओर शांति छा गई। हाथों में शुभ्र पुष्पों की वरमाला लेकर मैंने आमात्य के पीछे पीछे मंडप में प्रवेश किया। किसी ने पुकार कर कहा, यादव कुल उत्पन्न मथुरादेशी रूप सामग्री सम्राज्ञी राजकुमारी कुंती देवी। सभी राजेश्वर उठकर क्षण भर खड़े रहे। पिताजी ने हाथ ऊंचा किया, वे पुनः बैठ गए। मेरे सारे शरीर में विद्युत की लहर से दौड़ गई। आज मुझको अपने भावी जीवन यात्रा के लिए एक योग्य सहयात्री चुनना था। मेरा आज का चुनाव ही मेरे भविष्य का निर्माता था। अचानक कानों में हृदय की धड़कन सुनाई पड़ने लगी। वरमाला संभालते हुए मैं आमात के पीछे पीछे धीरे धीरे पैर रखते हुए मंडल में घूमने लगी। आमात प्रत्येक राजेश्वर का वर्णन सुना रहे थे। जितने विशेषता उनको ज्ञात थे उन सबका प्रयोग कर रहे थे। मैं तिरछे कटास से प्रत्येक राजेश्वर को देखती जा रही थी और स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रही थी। एक एक करके बैठे हुए सभी राजेश्वरों के आसन समाप्त होने को आए। अंत में एक ही नाम शेष रह गया था, मगध देश के शत्रुतापन महाराज दीर्घ। आमात ने परिचय दिया। मैं अस्वीकृति की मुद्रा में आगे बढ़ गई। सभी लोग कानाफूसी करने लगे। संध्याकालीन लंबी सुनहरी किरणें मंडप में फैलने लगी। अमात ने भयभीत स्वर में मेरे कानों में कहा, राजकुमारी अब यह मंडप युद्ध क्षेत्र बन जाएगा। आपको किसी न किसी का चयन अवश्य कर लेना था। यह क्या किया? कुछ कहने के लिए पिताजी खड़े हुए। इतने में मंडप के पश्चिमी भाग में एक कोलाहल सा हुआ। नगरजन झटपट एक ओर हटने लगे। उनके पीछे हजारों अश्वरोही भवन के भीतर में घुसे। किसी ने पुकार कर कहा, अश्वनापुराधिपति गौरवराज महाराज पांडु। हाथ की माला संभाल कर मैं पश्चिम की ओर देखने लगे। एक लंबी गौरववर्ण हृष्ट पुष्ट आकृति मंडप में आगे बढ़ती आ रही थी। अस्त होते हुए सूर्यदेव की किरणें पीछे से उस आकृति में पड़ रही थी। आकृति का चेहरा भरा हुआ गोल था, मानव सूर्यदेव ही स्वयंवर में कुंती की लाज रखने के लिए आ रहे थे। उस आकृति ने जैसे मंडप में प्रवेश किया, मैं आगे बढ़ी। अपने हाथों के ऊपर माला मैंने उस पुरुष श्रेष्ठ के गले में डाल दी। चारों ओर तालियां बज उठी। कोई आनंद से चिल्लाया, हस्तिनापुर कौरव कुलभूषण महारानी कुंती देवी की। सभी ने उसका उत्तर दिया, जय हो। मैं राजकुमारी कुंती से महारानी कुंती हो गई। मेरा मन आनंद सिंध में डुबकी लगाने लगा। समस्त आर्यावर्त पर जिसके पराक्रम की पताका भार आ रही थी, ऐसे कुलकुल की मैं महारानी बन गई। महाराज के साथ मैंने आशीर्वाद लेने के लिए पिताजी को नमस्कार किया। उन्होंने हर्षाभिभूत होकर आशीर्वाद दिया, कुलकुल की दिगंध व्यापी कृति तुम्हारे कारण सर्वलोक तक पहुँचे। आज तक जो अनपेक्षित घटनाएं घटित थी, उन सब में वे यही घटना एक ऐसी थी जो मुझको धीर बना सकती थी। मेरी इच्छानुसार घटी थी, मैं निश्चिंत हो गई थी।